بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت ایوم اس کے انواع سے کریں گے۔ آج آپ پوتر قرآن مجید کے سورہ حجرات کی 12ویں اور 13ویں آیتوں کی تلاوت اور انواع سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیان کرباشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان لانے والوں، بہت سی سوچوں سے بچو کہ کچھ سوچیں پاپ ہوتی ہیں، اور ٹوہ میں مت رہو، اور نہ تم میں سے کوئی پیٹھ پیچھے کسی کی نندہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا ماس کھائے؟ تمہیں سوئم اس بات سے گھن آئے گی، اور ایشور سے ڈرتے رہو، نسندیہ ایشور توبہ سویکار کرنے والا اور دیاوان ہے۔ ہے لوگو، ہم نے تمہیں ایک پرش و استری سے پیدا کیا، اور تمہاری بہت سی جاتیاں اور ونش بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ निसंदेह ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारे बीच सबसे अधिक प्रतिष्ठित वो है जो ईश्वर से सबसे अधिक भय रखता है। निसंदेह ईश्वर अत्यंत ज्ञानी और जानकार है।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणराज ईरान की आवाज। दोस्तों, आप हमारे प्रसारण को शॉर्टवे में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9090350654 92। दोस्तों, आज शनिवार है, दय की 24 और जनवरी की 14 तारीख है। साथ ही आज इस्लामी कैलेंडर के छठे महीने जमादी उस्सानी की 21 तारीख है। आज की हमारी सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप खबर सुनेंगे और उसके बाद आपकी सेवा में कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा पेश किया जाएगा और उसके बाद आपकी सेवा में कार्यक्रम ईरानी व्यंजन पेश किया जाएगा और आज की सभा के अंत में आपकी सेवा में जो कार्यक्रम पेश किया जाएगा वो होगा उज्जवल भविष्य। तो दोस्तों, कार्यक्रम के अनुसार अब आप रेडियो हिंदी तेहरान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार रविश जैदी से सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। इस्लामी गणराज ईरान के विदेश मंत्री की हिजबुल्लाह के महासचिव से अहम मुलाकात। ईरान की वायुसेना ने अपनी ताकत की दिखाई झलक, काल्पनिक दुश्मनों के ठिकाने हुए तबाह। इराक को विदेशी सेना की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री अल सूदानी। भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हिंसा, भगवा आतंकियों का आतंक जारी, इस बार मुस्लिम व्यापारी बना शिकार। श्रोताओं, अब आपकी सेवा में विस्तार से समाचार पेश है। ईरान के विदेश मंत्री ने हिजबुल्लाह के महासचिव के साथ लेबनान में भेंटवार्ता की है। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और सैयद हसन नसरुल्लाह के बीच होने वाली मुलाकात में क्षेत्रीय विषयों सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस मुलाकात के दौरान लेबनान तथा फिलिस्तीन के विषयों पर विशेष रूप से बात हुई। मुलाकात के दौरान ज़ायोनी शासन की धमकियों और उसके मुकाबले में प्रतिरोध के केंद्र की तत्परता पर भी चर्चा की गई। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान पूरी शक्ति के साथ लेबनान की सरकार और जनता के साथ ही वहां के प्रतिरोध का समर्थन करता रहेगा। उन्होंने लेबनान के सभी राजनीतिक दलों से मांग की है कि वे वार्ता के माध्यम से इस देश के राष्ट्रपति के चयन के मामले को हल करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि ये काम विदेशी हस्तक्षेप के बिना ही बहुत ही शालीनता के साथ अंजाम पा सकता है। याद रहे कि लेबनान के विदेश मंत्री के आधिकारिक निमंत्रण पर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान एक शिष्टमंडल के साथ लेबनान गए थे। लेबनान पहुंचकर उन्होंने इस देश के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंटवार्ताएं की हैं। इस्लामी गणराज ईरान की वायुसेना के डिप्टी कमांडर ने कहा है कि हमारी वायुसेना अपनी लड़ाकू शक्ति में सुधार के लिए, दूर के लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए स्मार्ट और सटीक हथियारों से लैस ड्रोन का उपयोग कर रही है। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी गणराज्य ईरान की वायुसेना के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मेहंदी हादियान ने कहा है कि ईरानी वायुसेना के रणनीतिक ढांचे में ड्रोन क्षमताओं के इस्तेमाल का बहुत महत्व है। ब्रिगेडियर जनरल हादियान ने कहा कि सामान्य तौर पर हाइब्रिड ऑपरेशन सिस्टम का कार्यान्वयन ने ईरानी वायुसेना की लड़ाकू शक्ति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सूचना एकत्र करने और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के साथ साथ ड्रोन सिस्टम वायुसेना के लड़ाकू विमानों को संचालित करने के लिए उपयुक्त और सुरक्षित तरीका प्रदान करते हैं। ईरानी वायुसेना के डिप्टी कमांडर ने ड्रोन सिस्टम की लड़ाकू क्षमताओं की ओर भी इशारा किया और कहा कि ईरानी वायुसेना अपनी लड़ाकू शक्ति में सुधार करने के लिए दूर के लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए स्मार्ट और सटीक हथियारों से लैस ड्रोन का उपयोग करती है। ब्रिगेडियर जनरल हादियान ने कहा कि आज ईरानी वायुसेना में यूएवी सिस्टम को एक अभूतपूर्व शक्ति के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरानी वायुसेना के डिप्टी कमांडर ने जोर देकर कहा कि वायुसेना की भूमिका और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में ड्रोन सिस्टम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आज हम ईरानी वायुसेना के विभिन्न ठिकानों और परिचालन इकाइयों में विभिन्न क्षमताओं वाले ड्रोन का उपयोग कर देश की हवाई सीमा की निगरानी कर रहे हैं। ब्रिटेन की गुप्तचर सेवा के लिए जासूसी करने वाले अली रजा अकबरी को फांसी दे दी गई है। ईरान की न्यायपालिका की ओर से घोषणा की गई है कि ईरानी और ब्रिटेन की नागरिकता रखने वाले जासूस अली रजा अकबरी नामक ब्रिटिश जासूस को, जिसे ईरान में फांसी की सजा सुनाई गई, फांसी दे दी गई। धरती पर विध्वंस और इस्लामी गणतंत्र ईरान में आंतरिक सुरक्षा के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाइयों और MI6 के साथ संपर्क के कारण इस ब्रिटिश जासूस को फांसी की सजा सुनाई गई थी। कुछ समय पहले अली रजा अकबरी को राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। ब्रिटेन के लिए जासूसी करने और उसके द्वारा किए गए अपराधों के आधार पर उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। इराकी प्रधानमंत्री ने अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान जर्मन चांसलर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इराक को अब अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन वालों की जरूरत नहीं है। इराकी सेना आज आतंकवाद को हराने में सक्षम है। इराकी समाचार एजेंसी वा की रिपोर्ट के मुताबिक इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शेया अल सूदानी ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि जर्मनी इराक में आतंकवाद के खात्मे, लोकतंत्र और विकास का समर्थक रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी जर्मन चांसलर के साथ मुलाकात दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की शुरुआत साबित होगी। इराकी प्रधानमंत्री अल सूदानी ने कहा कि जर्मनी कंपनी सीमेंस के साथ काम करने का इराक का अनुभव बहुत सफल रहा और इराक अन्य जर्मन कंपनियों के साथ भी काम करना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि जर्मनी इराक के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बहुत गंभीर है और दोनों देशों के बीच समझौतों के लिए विशेष टीमें काम कर रही हैं। इराकी प्रधानमंत्री अस्सूदानी ने कहा कि सैन्य सहयोग के लिए जर्मनी को धन्यवाद करता हूं और आज इराकी बल आतंकवाद को हराने में सक्षम है और अब उन्हें इराक में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बलों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस समय इराक में जो भी विदेशी सेना मौजूद है उसका उद्देश्य केवल इराकी बलों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हिंसा न केवल कम होने का नाम नहीं ले रही है बल्कि इसमें हर दिन वृद्धि होती जा रही है। वहीं खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते भगवा आतंकी किसी न किसी बहाने से मुसलमानों पर हमला करते रहते हैं। इस बार ट्रेन में यात्रा कर रहे एक मुस्लिम व्यापारी को कट्टरपंथी हिंदुओं ने निशाना बनाया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के प्रतापगढ़ जा रही पद्मावत एक्सप्रेस में एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित मुस्लिम व्यक्ति का आरोप है कि चोरी के झूठे आरोप लगाकर कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की है। इसके साथ ही उसने आरोप लगाया कि उससे जय श्री राम के नारे भी लगाने को कहा गया, हालांकि उसने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद भगवा आतंकियों उन्हें उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। वायरल वीडियो की पुष्टि करते हुए पीड़ित शख्स ने कई और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पीड़ित ने बताया है कि वो दिल्ली से मुरादाबाद के लिए पद्मावत ट्रेन में चढ़ा था। हापुड़ में कुछ लोग ट्रेन में चढ़े, ट्रेन में भी भीड़ बहुत थी। 8 से 10 लोगों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। उसी दौरान एक आदमी ने पीछे से बोला, मुल्ला चोर है, मुल्ला चोर ही होते हैं। ये सुनते ही लोगों ने मारना चालू कर दिया। उन्होंने आगे बताया कि लोगों ने मेरी दाढ़ी भी खींची और जय श्री राम के नारे लगाने को कहा। मैंने जय श्री राम का नारा लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए और खूब मारा। आरोपियों ने मेरे 2,200 रुपये भी छीन लिए। सन 2020 में दुनिया में सबसे अधिक प्रवासी भारतीय थे। पूरी दुनिया में लगभग 2 करोड़ भारतीय विश्व के दूसरे देशों में जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया में प्रवासियों की संख्या की दृष्टि से भारत सबसे आगे है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रिपोर्ट जारी करके बताया कि भारतीय मूल के लगभग 2 करोड़ लोग अपनी मातृभूमि से अलग किसी दूसरे देश में रहते हैं। इस प्रकार से प्रवासियों के विदेश रहने के मामले में भारत जहां पर पहले नंबर पर आता है, वहीं पर उसके बाद मैक्सिको, रूस, चीन और सीरिया का नंबर है। एंटोनियो गुटेरेस की ओर से कहा गया है कि वे यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने में मदद करने के लिए हाजिर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की सलाहकार ने बताया कि यूक्रेन संकट के समाधान के लिए महासचिव एंटोनियो गुटेरेस तैयार है। रोजमेरी डी कार्लो ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हालांकि यूक्रेन संकट को वार्ता के माध्यम से हल करने की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है, किंतु युद्ध समाप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संकट के साथ भी ऐसा ही होगा। इसी बीच राष्ट्र संघ में रूस के स्थायी प्रतिनिधि नेमजिया ने शुक्रवार को कहा कि कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से रूस यूक्रेन में जारी सैन्य अभियान को बंद करने के लिए तैयार है। अमरीकी पुलिस ने करण देकर एक अमरीकी अश्वेत युवा की हत्या कर दी है। लॉस एंजलिस की पुलिस ने ट्रेजर गन से किनन एंटरसन नामक एक अश्वेत की हत्या कर दी है। लॉस एंजलिस की पुलिस ने एक बयान जारी करके बताया है कि 3 जनवरी को नगर के वीनस नामक क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट के बाद लॉस एंजलिस की पुलिस किनन एंडरसन नामक अश्वेत को गिरफ्तार करने पहुंचती थी। गिरफ्तारी के दौरान विरोध करने के कारण पुलिस ने किनन एंडरसन के विरुद्ध करंट मारने वाली गन ट्रेजर गन का प्रयोग किया। ट्रेजर गन के प्रयोग के कुछ समय बाद हार्ट अटैक से किनन एंडरसन की मौत हो गई। किनन एंडरसन अमेरिका में ब्लैक लाइव मैटर नामक अभियान चलाने वाली पैट्रिस कलर्स के चचेरे भाई हैं। पैट्रिस कलर्स ने बताया कि पुलिस ने मेरे भाई की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि मेरा भाई मदद मांग रहा था, लेकिन उसे मदद नहीं मिली। श्रोताओं, इसी के साथ समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओं, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम बात करेंगे ईरान के विदेश मंत्री की लेबनान यात्रा की। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम इसराइल के भीतर जारी टकराव की स्थिति पर भी एक नजर डालेंगे। भारत नियंत्रित कश्मीर में सरकार की ओर से हथियार बांटे जाने के मुद्दे पर जहां गृहमंत्री ने अपना पक्ष रखा है, वहीं गुपकार अलायंस ने इससे असहमति जताई है। ये विषय भी कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। तो चर्चा के विषय यही है, आरंभ करते हैं ईरान के विदेश मंत्री की लेबनान यात्रा से। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान लेबनान की यात्रा पर पहुंचे हैं और उन्होंने लेबनान का हर क्षेत्र में, विशेष रूप से बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में, भरपूर समर्थन करने का आश्वासन दिया है। जायजा पेश कर रहे हैं कायम रिजवी।
ईरान के विदेश मंत्री ने अपनी आधिकारिक लेबनान यात्रा के दौरान इस देश के अपने समकक्ष के साथ भेंटवार्ता की है। विदेश मंत्रालय का पद ग्रहण करने के बाद हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की ये तीसरी लेबनान की यात्रा है। लेबनान वो देश है जिसको इस्लामी गणतंत्र ईरान की विदेश नीति में विशेष स्थान प्राप्त है। ईरान लेबनान के प्रतिरोध का समर्थक रहा है। ज़ायोनी शासन के विरुद्ध युद्ध में उसने लेबनानी प्रतिरोध का ही समर्थन किया। ईरान सदा से लेबनान के भीतर शांति एवं स्थिरता पर बल देता आया है। उसका मानना है कि मतभेदों से दूर रहकर लेबनानी राजनीतिक दल राजनीतिक समाधान से इस देश की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अमीर अब्दुल्लाहियान की लेबनान यात्रा में ईरान के इस दृष्टिकोण पर फिर बल दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अपने मित्र देश लेबनान के आंतरिक मामलों में इस्लामी गणतंत्र ईरान कोई हस्तक्षेप नहीं करता। उनका कहना था कि वे इस देश के राजनीतिक दलों के बीच वार्ता प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। विशेष बात यह है कि ईरान कठिन परिस्थितियों में भी लेबनान का समर्थक रहा है। हालांकि लेबनान के समर्थन का दावा करने वाले विदेशी इस देश की समस्याओं पर मौन धारण किए हुए हैं। कहीं कहीं पर तो वे लेबनान के भीतर उन गुटों और उन दलों का समर्थन करते हैं जो इस देश की शांति एवं सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेबनान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस गंभीर आर्थिक संकट का मुख्य कारण अमरीकी प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त लेबनान के लिए दी जाने वाली सहायता पर रोक लगाना भी शामिल है। जानकारों का कहना है कि सऊदी अरब सहित सरकारों ने सन 2021 के दौरान लेबनान पर अधिक से अधिक दबाव डालकर इस देश की समस्याओं में बढ़ावा देने का काम किया है। इसके विपरीत इस्लामी गणतंत्र ईरान ने लेबनान के लिए ईंधन भेजकर इस देश की जनता की समस्याओं को कम करने के प्रयास किए। ईरान की ये नीति अब भी जारी है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इसी संदर्भ में कहा है कि तेहरान लेबनानी जनता के दुख दर्द को कम करने के लिए बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक सहायता करने के लिए तैयार है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अवैध ज़ायोनी शासन के संदर्भ में ईरान और लेबनान के समान दृष्टिकोण पाए जाते हैं। दोनों ही फिलिस्तीनियों के विरुद्ध ज़ायोनी अत्याचारों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसीलिए लेबनान के विदेश मंत्री ने ईरान के अपने समकक्ष के साथ भेंटवार्ता में ये कहा है कि मस्जिदुल अक्सा में ज़ायोनी शासन के सुरक्षा मंत्री के प्रवेश की हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने विश्व समुदाय से ये मांग की है कि वो इसराइल के अतिक्रमण को रोकने के लिए अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से निर्वाह करे।
इसराइल में राजनीतिक मतभेद टकराव की स्थिति तक पहुंच चुका है। शनिवार को नेतन्याहू सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है। जायजा पेश कर रहे हैं सैयद मीसम।
शनिवार को एक बार फिर तेल अवीव में ज़ायोनी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नई सरकार के खिलाफ विशाल प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है। ایک انومان کے مطابق شنیوار کو ہونے والے پردرشن نیتنیاہو کی دکشنپنتھی سرکار کے خلاف اب تک کا سب سے بڑا پردرشن ہے۔ اسرائیل کے پرتدندی راجنیتک گٹوں نے اس پردرشن کے سمرتھن اور اس کے خلاف اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے۔ نیتنیاہو نے کٹرپنتھی اور دکشنپنتھی زائونی راجنیتک دلوں کے ساتھ گٹھ بندھن کر کے اپنی سرکار کا گٹھن کیا ہے۔ یہ اسرائیل کی اب تک کی سب سے کٹر دکشنپنتھی سرکار ہے، جسے لے کر خود زائونی راجنیتک گلیاروں میں گہری چنتا پائی جاتی ہے۔ اسرائیلیوں کا ماننا ہے کہ نیتنیاہو اپنے خلاف لگے آروپوں سے بچنے کے لیے اور ستا کے لالچ میں لوک تانترک ویوستھا کی بلی چڑھا رہے ہیں، کیونکہ جو گٹ ان کے ساتھ ستا میں بھاگیدار ہیں وہ نہ تو کسی طرح کے مولیوں کو مانتے ہیں اور نہ ہی لوک تنتر میں وشواس رکھتے ہیں۔ اس سے فلسطینیوں کے ساتھ زائونی شاسن کا ٹکراؤ بڑھ جائے گا اور کھیتر بھی اس کی بھیڑ چڑھ جائے گا۔ نیتنیاہو کے پرتدندی پورو اسرائیلی پردھان منتری یائر لیپیڈ اس دکشنپنتھی سرکار کے ورودھیوں کا نیتتو کر رہے ہیں۔ لیپیڈ نے زائونی پولیس پرمکھ سے ورودھی پردرشنکاریوں کو سرکشا اپلبدھ کرانے کی مانگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے امید ہے آپ پولیس کو پردرشنکاریوں کے ساتھ سمان جنک ویوہار کا آدیش دیں گے تاکہ لوگ اپنے لوک تانترک ادھیکاروں کا استعمال کرتے ہوئے اپنا ورودھ جتا سکیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پولیس نشپکش رہے اور ستا کے دباؤ میں کام نہ کرے۔ نیتنیاہو کی کیبینیٹ میں شامل کئی منتریوں نے ورودھیوں کو گرفتار کرنے اور ان کے ساتھ سختی برتنے کی دھمکی دی ہے۔ دکشنپنتھی پارٹی مہان یہودی کے پرمکھ ایتمر بن غفیر نے لیپیڈ اور گینٹس سمیت ورودھی نیتاؤں کو گرفتار کرنے کی مانگ کی ہے، جو شنیوار کے پردرشن کے آیوجن میں مہتوپورن بھومیکا نبھا رہے ہیں۔ حالانکہ ان دھمکیوں کا پردرشنکاریوں پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے اور وپکشی نیتاؤں نے لوگوں سے بڑھ چڑھ کر ان پردرشنوں میں بھاگ لینے کی مانگ کی ہے۔ اسرائیل کے ورتمان راجنیتک واتاورن کو دیکھتے ہوئے یہ انومان لگانا کٹھن نہیں ہے کہ اگر پرتدندی گٹوں میں ٹکراؤ اسی طرح سے جاری رہا تو زائونی شاسن کو ابھوتپور آنترک سمسیا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ غیر قانونی شاسن اندر سے ہی بکھر سکتا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
بھارت نینترت کشمیر میں جموں کے راجوری علاقے کی گھٹنا کے بعد بندوقیں بانٹے جانے کے وشے پر جہاں گرہ منتری نے سرکار کا پکش رکھا ہے، وہیں علاقے کے گپکار الائنس نے اس سے اسہمتی جتائی ہے۔ بیورے کے ساتھ ہمارے سنواد داتا سپتے محمد حسن۔
بھارت کے گرہ منتری امت شاہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں شانتی میں بادہ ڈالنے کے کسی بھی پریاس کو سفل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ جموں میں ایک پترکار سمیلن کو سمبوجت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں پرانت کے راجوری میں جو گھٹنا گھٹی ہے وہ نندنیہ ہے، پرنتو استھانیہ لوگوں نے جس طرح سے اس گھٹنا کے بعد ریئیکٹ کیا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں کے تمام ناگرک ایکجٹ ہو کر آتنکواد اور الگاؤواد کے ورودھ اٹھ کھڑے ہوئے، جس کا میں سواگت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جموں پرانت کے تمام چھیتروں میں سیکیورٹی چوکس کر دی گئی ہے اور ایسی کسی بھی گھٹنا کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اسلحہ دیا جا رہا ہے تاکہ وہ آتنکواد کا مقابلہ کر سکیں۔ یہاں یہ بات الیکھنی ہے کہ راجوری میں جو گھٹنا گھٹی تھی اس میں دو بالکوں سہت سات لوگوں کی مرتیو ہو گئی تھی، جس کے بعد زوردار پردرشن بھی ہوئے تھے۔ اگرچہ بھارت کے گرہ منتری امت شاہ کو اس چھیتر کی یاترا کرنا تھا، پرنتو موسم کی خرابی کے سبب وہ وہاں نہیں جا سکے۔ انہوں نے پھر ٹیلی فون دورہ ان تمام لوگوں کے سگے سمبندیوں سے سمپرک کیا اور انہیں یہ یقین دلایا کہ ان کی ہر سطح پر مدد کی جائے گی۔
ان کا حوصلہ پورے دیش کے لیے ادارن روپ حوصلہ تھا۔ سبھی لوگوں کا کہنا تھا، ایک چتر ہمارا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ پریوار پاک اوکیوپائی کشمیر سے بھی آئے تھے، پھر بھی ڈٹ کر لڑنے کا موڈ اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی پردرشت ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد آج یہاں پر سیکیورٹی ایجنسیز کے سبھی پہلوؤں پر اور سبھی پرکار کی جتنی بھی ایجنسیاں جموں کشمیر کے سرکشا کے لیے جن کی بھومیکا ہے، وہ سبھی ایجنسیوں کے ساتھ، وشیش کر جموں کھیتر کے سرکشا کے انتظام کو لے کر ایک ڈیٹیل بیٹھک ہوئی ہے۔ آنے والے دنوں میں ایک بہت سرکشت گریڈ بنانے کے لیے بھی یہاں پر چرچا ہوگی۔
द्विपक्षीय दलों के गठबंधन गुपकार अलायंस ने कहा है कि पिछले चार वर्षों से यह बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति आई है, परंतु जिस तरह से हिंसक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है उससे यह बात सिद्ध हो गई है कि नई दिल्ली की मौजूदा प्रशासन जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने में बुरी तरह असफल हुई है। गुपकार अलायंस के प्रवक्ता मुजफ्फर शाह ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि हम एक बार फिर नई दिल्ली को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए वार्ता का दार अख्तियार किया जाए, परंतु हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है।
दोस्तों, अभी आप हमारे साथी अहमद अब्बास से कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा सुन रहे थे। अब आपकी सेवा में कार्यक्रम ईरानी व्यंजन पेश किया जाएगा।
ईरानी व्यंजन। दोस्तों, कार्यक्रम ईरानी व्यंजन की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। पिछले कार्यक्रम में हमने दुनिया में फूड टूरिज्म के बारे में बात की। आज हम ईरान के लोगों की पकवानों और खाने पीने के तौर तरीके के बारे में बात करेंगे।
अगर हम भोज कल्चर या डाइट कल्चर की बात करें तो ये केवल एक प्लेट खाने की बात नहीं है, बल्कि ये किसी भी देश की मूल्यवान धरोहर भी है। इतिहास, लोक कथाओं, शिलालेखों, लिबास, रीति रिवाजों और धर्म तथा अन्य सामाजिक पहलुओं की तरह एक बड़ा विषय है। इसे किसी भी देश की मूल्यवान विरासत के रूप में देखा जाता है।
अगर हम ईरान की बात करें तो इस देश में अनेक प्रकार की जातियां, संस्कृतियां और धर्म पाए जाते हैं, इसलिए ईरान के लोगों के पकवान और खाने भी कई किस्मों के और बड़े रंग बिरंगे हैं। इसके अलावा जलवायु की विविधता और लोगों के जीवन गुजारने की जगहों की विविधता के चलते भी खानों की किस्में बहुत ज़्यादा हैं। ईरान के उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक खानों के स्वाद में बड़ा अंतर है। मिसाल के तौर पर जो शहर समुद्र के करीब बसे हैं, वहाँ के लोगों के खानों में मछली प्रमुखता से दिखाई देती है और अनेक प्रकार के व्यंजनों में मछली और झींगा बहुत प्रमुख रूप से नजर आता है और मछली और झींगे से बने ये भोजन बड़े स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। जिन इलाकों में लोग पशुपालन और खेतीबाड़ी में व्यस्त हैं, वहाँ जानवरों के गोश्त और साग सब्जियों से बनने वाले पकवान बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। यानी पर्यावरण और जीवन शैली का किसी भी इलाके की संस्कृति पर बड़ा गहरा असर होता है।
इस तरह पुराने इतिहास, जातियों की विविधता, मौसमों और संस्कृतियों की विविधता के नतीजे में ईरान उन देशों में गिना जाता है जहाँ बेशुमार किस्म के खाने और पकवान पाए जाते हैं। ईरान के लोगों को 2500 से अधिक खानों की आदत है। जबकि ईरान में प्रचलित पेय की बात की जाए तो इसकी किस्में 109 तक बताई जाती हैं। ईरानियों के दस्तरखानों पर ये खाने और ये पेय बड़े सुंदर नजर आते हैं और दस्तरखान का ज़ाहरी रूप भी बड़ा मनमोहक होता है। ईरान के दस्तरखानों की दुनिया के बड़े समृद्ध दस्तरखानों में गिनती होती है। जहां ईरानी खानों की किस्में बहुत ज़्यादा हैं, वहीं इन खानों को पकाने के तरीके भी अलग अलग हैं। अगर खाने पकाने की विधियों की बात की जाए तो चीनी विधियों और प्राचीन रोम की विधियों के बाद ईरान में खाने पकाने की सबसे अधिक विधियां हैं। आजकल का जीवन मशीनी हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग समय की कमी के चलते फास्ट फूड का प्रयोग करते हैं। मगर ईरान में आज भी खाने पकाने के पुराने तरीके प्रचलित हैं, जिनमें खाना धीरे धीरे और ज़्यादा समय में तैयार होता है, लेकिन बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। ईरान में सालन और सूखे खाने बड़े सुकून के साथ पकाए जाते हैं और चावल पकाने के लिए खास इंतजाम किया जाता है।
ईरान में खाने पकाने का हुनर बड़ा सूक्ष्म हुनर है। ये आर्ट भी कालीन बुनने के आर्ट की तरह बड़ा आकर्षक है। ये आर्ट सदियों में ईरानी घरों, गांवों और शहरों में अस्तित्व में आया और परवान चढ़ा और आज बिल्कुल पुख्ता शक्ल में प्रचलित है। ये कहना चाहिए कि किसी भी देश के खान पान से उस देश की सभ्यता और संस्कृति इतिहास का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इतिहास में सबसे बड़ी सभ्यताएं वे रही हैं जिनके पास बहुत व्यापक, विविध और सटीक फूड कल्चर रहा है। यानी ये कि सभ्यता खाने को केवल भूख मिटाने की नज़र से नहीं देखती थी, बल्कि उनकी नज़र भोजन और पकवान के अनेक पहलुओं पर होती थी।
ईरान की सभ्यता भी बड़ी प्राचीन सभ्यताओं में है। दुनिया के इतिहास में जगह जगह इसकी छाप और इसका सुराग नज़र आता है। अगर हम ईरानियों के दस्तरखान पर ध्यान दें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ईरानियों की नज़र में भोजन का महत्व बहुत ज़्यादा है। अधिकतर ईरानी परिवारों में भोजन का बहुत ख़ास कल्चर है। जब हम ईरानी खानों और ईरानी दस्तरखान की बात करते हैं तो दरअसल हम खानों की विविधता और इसके साथ साथ अनेक प्रकार की रीति रिवाजों की भी बात कर रहे होते हैं। ये सारा का सारा खजाना एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक स्थानांतरित होता हुआ इस दौर तक पहुंचा है। इन रीति रिवाजों और परंपराओं में हम एक साथ बैठने, बड़ों के सम्मान, दस्तरखान बिछाने, हलाल और हराम पर खास तवज्जो रखने का जिक्र कर सकते हैं।
खाना जहां हर इंसान की निजी जरूरत है, वहीं ये सामाजिक विषय भी है। लोगों को ये अच्छा लगता है कि एक साथ जमा हो और साथ में खाना खाए, इससे उन्हें बड़ी अच्छी अनुभूति होती है। ईरानी परिवारों की बात करें तो खाने के समय वे एक साथ एक दस्तरखान पर बैठते हैं और साथ में खाना खाते हैं। ईरानी परिवारों में ये चलन नहीं है कि परिवार का हर सदस्य अलग खाना खाए। ये परंपरा बहुत पुराने समय से आज तक चली आ रही है और अधिकतर ईरानी परिवारों में इस पर पाबंदी से अमल किया जाता है।
ईरानी दस्तरखान की दूसरी रीतियों में मेहमान नवाजी भी है। यानी दस्तरखान बिछाना दरअसल मेहमान नवाजी के जज्बे का भी आईना है। ये सामाजिक रिश्तों को जिंदा रखने, दोस्तों का सम्मान करने और रिश्तेदारों पर तवज्जो देने का एक तरीका भी है। ईरानी अलग अलग अवसरों पर दावतें करते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाते हैं और दस्तरखान पर एक साथ बैठते हैं। इस तरह सब मिलकर बड़ी खुशी से पल गुजारते हैं और बड़े अच्छे भाव के साथ वहां से उठते हैं।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईरानी व्यंजन। हमने आपको ईरानी दस्तरखान के रीति रिवाजों के बारे में बताया। अब हम ईरानी दस्तरखानों के सांस्कृतिक पहलू और खानों के बारे में कुछ बताएंगे।
जश्न हो, खुशी का मौका हो या कोई धार्मिक पर्व और त्योहार हो تو ایرانیوں کے دسترخوان کا رنگ بدل جاتا ہے، جیسے نوروز شب یلدا کی طرح پارمپرک جشن اور پرو ہو تو اس کے لیے وشیش پکوان تیار کیے جاتے ہیں۔ پکوانوں کے ساتھ ہی ان تہواروں کے پھل بھی وشیش ہوتے ہیں۔ شب یلدا یا یلدا کی رات کا پرو ہو تو تربوز اور انار ضرور دسترخوان پر رکھا جاتا ہے۔ عید نوروز ہو تو ایرانی کیلنڈر کے اس پہلے دن خاص سبزی پلاؤ اور مچھلی سب سے پریہ کھانا ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ دھارمک افسروں پر جیسے محرم کی آزاداری کے موقع پر یا رمضان کے مہینے میں خاص کھانے اور نیاز کے خاص پکوان ہوتے ہیں جو سال کے انیہ دنوں میں کم ہی دکھائی پڑتے ہیں۔ کچھ کھانے جیسے حلیم، آش، کھجور، شل زرد، حلوہ، اسی طرح زلبیا یا جلیبی اور بامیا بھی پکوان اور کھانے کی چیزیں ہیں جو آپ کو رمضان کے مہینے میں اسی طرح محرم کی آزاداری میں خاص طور پر نظر آتے ہیں۔ یہ اوسر غریبوں کو کھانے کھلانے کا بھی خاص اوسر ہے۔ ان موقعوں کے دسترخوان پر خاص روحانیت اور آدھیاتم چھایا رہتا ہے۔ اس دسترخوان پر سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیں اور کھانا کھائیں۔ ان اوسروں پر ایک دوسرے کو کیول کھانے کھلانے کا رواج نہیں ہے بلکہ دوسری بھی انیک ریتیاں ہیں جو مانوتا پریم کا درشیہ پیش کرتی ہیں۔
ایرانی کھانوں میں سانسکرتک پہلوؤں اور دسترخوان کے ریتی رواجوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ ان ریتی رواجوں کے ساتھ ہی کھانا پکانے میں اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کے سواستھ سے جڑے آیام کیا ہیں۔ ایرانی دسترخوان پر سجائی جانے والی چیزوں میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کیا چیزیں کھائی جائیں جو ہمارے سواستھ کے لیے اچھی ہوں اور کن کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کس کھانے کو کس طرح کی چاشنی کے ساتھ کھانا چاہیے جو ہمارے شریر کے لیے بھی اچھی ہو اور سواد کے حساب سے بھی اچت ہو۔ ایرانی دسترخوان پر رکھے جانے والے کھانوں کے بارے میں پارمپرک چکتسا کی شبداولی بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے یہ کہ کون سے کھانوں کی پروتی گرم ہے اور کن کھانوں کی پروتی ٹھنڈی ہے، کون سے کھانے بھاری ہیں اور کون سے کھانے ہلکے ہیں۔ पौष्टिक और स्वादिष्ट ईरानी खानों का परिचय। घर बैठे सीखिए लज्जतदार ईरानी खाने पकाने की विधि। कार्यक्रम श्रृंखला ईरानी व्यंजन में हर शनिवार को कार्यक्रम ईरानी व्यंजन।
ایرانی دسترخوان پر ایک اور بات کا بھی بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ کھانا حلال ہو۔ اسلام دھرم میں اس پر بہت تاکید کی گئی ہے۔ ایرانی دسترخوان پر کچھ چیزیں کبھی نہیں رکھی جاتیں، اس کی وجہ سانسکرتک اور دھارمک ہے۔ پرانے زمانے سے ہی ان چیزوں کو دسترخوان سے دور رکھا گیا ہے اور ویگانک ریسرچ سے بھی ان چیزوں کا نقصان ثابت ہو چکا ہے۔
ایرانی دسترخوان کی سمردھ سنسکرتی کے کارن بہت سے دیشی اور ودیشی پریٹک جب ایران کی سیر پر نکلتے ہیں، ایران کے الگ الگ شہروں اور علاقوں کی یاترا کرتے ہیں تو وہاں کے کھانوں کی ویودھتا کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ الگ الگ جاتیوں کی جہاں دوسری کئی چیزیں پہچان بناتی ہیں، وہیں کھانے بھی ہر قوم کی پہچان کا حصہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر جاتی کے کھانے پکانے کے طریقے بھی الگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وبھن دیشوں میں اب فوڈ ٹوریزم تیزی سے زور پکڑ رہا ہے۔ اس سے لوگوں کو آمدنی بھی ہوتی ہے، ساتھ ہی سانسکرتک و دھارمک پرمپراؤں اور ریتی رواجوں کا لین دین بھی ہوتا ہے۔
تو دوستو، کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ انومتی دیجیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑراج ایران کی آواز۔ تو دوستو، ابھی آپ نے ایرانی ویجن کارکرم کو سنا۔ اب آپ کی سیوا میں جو آج کی سبھا کا انتم کارکرم ہے وہ ہے اجول بھوش، تو وہ پیش کیا جا رہا ہے، آپ سنتے۔
उज्ज्वल भविष्य।
दोस्तों, कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य की अंतिम कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और रवेश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम अमेरिका और इसराइल की दुश्मनी के बावजूद दुनिया में बढ़ते इस्लामिक क्रांति के प्रभाव की चर्चा करेंगे।
दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने उल्लेख किया था कि इस्लामी क्रांति के वैश्विक प्रभाव का मूल कारण इस्लाम की शिक्षाएं हैं। इस क्रांति की विशेषताओं में से इसकी मौलिकता और नवीनता, बौद्धिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, समृद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों के साथ साथ पश्चिम के सामने इस्लाम की एक नई छवि पेश करना है। आज जब दुनिया पर एक नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि पूरे इस्लामी जगत में एक हलचल सी है और हर जगह इस्लाम के पुनरुत्थान और इस्लामी नेतृत्व की बातें हो रही हैं। दुनिया के दूसरे देशों में इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल करने, इस्लाम को स्वीकार करने का रुझान बढ़ रहा है। दूसरे धर्मों में भी नई जान पड़ गई है।
यूरोप में इस्लाम के विस्तार के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ईरान की इस्लामिक क्रांति की लहर से भी अपेक्षाकृत काफी हद तक लोग प्रभावित हुए हैं। यूरोप में मुसलमानों की सटीक जनसंख्या और वृद्धि का निर्धारण कई कारणों से बहुत मुश्किल है, जिसमें से एक सरकारों की संवेदनशीलता भी है। फ्रांस में सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या है, उसके बाद जर्मनी और ब्रिटेन का नंबर आता है। इस्लामिक क्रांति ने मुस्लिम महिलाओं की सही तस्वीर पेश करके यूरोपीय महिलाओं को काफी हद तक प्रभावित किया है, इसलिए यूरोप में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा इस्लाम स्वीकार कर रही हैं। उदाहरण स्वरूप, जर्मनी में 2007 में 10,000 लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया था, जिसमें से 62% महिलाएं थी।
दोस्तों, बुद्धिजीवी, पर्यटक और पादरी इस्लाम स्वीकार करने वालों में प्रमुख हैं। इस्लामी क्रांति ने यूरोप में इस्लाम को हाशिए से निकालकर केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया और मजहब और अध्यात्म में एक नई जान फूंक दी। यूरोपीय मुसलमानों की पहचान की खोज के सबसे स्पष्ट परिणामों में से एक धार्मिक दिखने और इस्लामी समारोह में भाग लेने की उनकी तात्परता है। सर्वेक्षणों के नतीजों से ये स्पष्ट है कि यूरोप में मुसलमान पहले की तुलना में अधिक मस्जिदों में जाते हैं और धार्मिक रस्मों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा पिछले 10 वर्षों की तुलना में आज अधिक मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं। ईद और जुमे की नमाजों में मुसलमानों की बढ़ती संख्या, मुसलमानों का इस्लामी पहचान जाहिर करना और महिलाओं का हिजाब पहनना इस बात की निशानी है कि यूरोप में इस्लाम का पौधा फल फूल रहा है।
यूरोपीय देशों में इस्लामी चैरिटी संस्थाओं और ब्याज मुक्त बैंकों का विकास, इस्लामी शिक्षाओं से लाभ उठाने वाली पाठ्य पुस्तकें और लड़कियों और लड़कों के लिए एक अलग स्कूलों की बढ़ती प्रवृत्ति इसके अन्य संकेत हैं। इसी तरह से मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच हलाल खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग और पूरे यूरोप में हलाल मीट की आपूर्ति इस क्षेत्र में इस्लाम की लोकप्रियता में वृद्धि का सबूत है। यूरोप में हलाल बाजार का कुल मूल्य वर्तमान में 99 अरब डॉलर है, जबकि वैश्विक बाजार में इसका मूल्य 639 अरब डॉलर है। इस्लामिक क्रांति की सफलता के बाद यूरोपीय मुसलमानों में विश्व भर के मुसलमानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की भावना मजबूत हुई है, जिससे मुस्लिम उम्मत में एकता की भावना को बल मिला है। यूरोपीय मुसलमानों में अपनी धार्मिक और राजनीतिक पहचान उजागर करने और अपने धार्मिक अधिकारों के संघर्ष करने की प्रवृत्ति का एक दूसरा उदाहरण 2005 में डेनमार्क में पैगंबर इस्लाम के अपमानजनक कार्टूनों के खिलाफ विशाल प्रदर्शन है। ईरान में इस्लामिक क्रांति की सफलता के बाद से यूरोपीय देशों में इस्लामी सांस्कृतिक केंद्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
दोस्तों, इस्लामी क्रांति को ईरान और दुनिया में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का जनक माना जाना चाहिए। ऐसी क्रांति की जिसे इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने शताब्दी का चमत्कार और प्रकाश का धमाका करार दिया था। वास्तव में इस्लामी क्रांति राजनीतिक दुनिया के इतिहास में एक ऐसी घटना थी जिसकी विशेषताओं ने उसे फ्रांस और रूस की क्रांतियों से विशिष्ट बना दिया था। शहीद मुताहरी का मानना था ईरान की इस्लामी क्रांति की विशेषताओं ने उसे दुनिया की सभी क्रांतियों से विशिष्ट बना दिया है। इस संदर्भ में वरिष्ठ नेता का कहना है कि हमारी क्रांति का मूल बिंदु यह है कि क्रांति की सफलता के साथ लोगों की भूमिका समाप्त नहीं हुई। उन दिनों कुछ लोग थे जो कहते थे कि अब ठीक है, क्रांति सफल हो गई, लोगों को अब अपने घरों को वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह डट गए और उन्होंने लोगों को जिम्मेदारियां सौंप दी। क्रांति की सफलता के 50 दिन बाद ही देश में राजनीतिक व्यवस्था की बुनियाद जनमत संग्रह पर रखी गई। पिछले 200 साल में ऐसा किसी भी क्रांति में नहीं हुआ है। क्रांति की शुरुआत से ही देश के भीतर और बाहर उसके खिलाफ साजिशें रची जाने लगीं। क्रांति विरोधियों को दुनिया की दो महाशक्तियों का समर्थन प्राप्त हो गया, जिसके बाद वे लोग कहते थे कि ये क्रांति 6 महीने से ज्यादा बाकी नहीं रहेगी।
इस्लामी क्रांति को उखाड़ फेंकने के लिए जो भी साजिशें हुई वो किसी भी शासन के पतन के लिए काफी थीं। बल्कि कहा जा सकता है कि इस्लामी क्रांति की तुलना में किसी भी क्रांति का विरोध दो महाशक्तियों ने मिलकर नहीं किया होगा। क्रांति विरोधी गुटों, खासतौर पर MKO ने क्रांति के उच्च अधिकारियों और समर्थकों की हत्याओं में किसी तरह का कोई संकोच नहीं किया। क्रांति की सफलता के बाद 1981 में 2 महीने के अंतराल से जुमरिया इस्लामी पार्टी और प्रधानमंत्री के कार्यालयों में बम धमाके हुए, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई मंत्री शहीद हो गए। यह आतंकवादी गुट अब तक 17,000 से ज्यादा ईरानी अधिकारियों और आम लोगों को शहीद कर चुका है।
दोस्तों, इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम ने विश्व की दो महाशक्तियों के समर्थन से ईरान पर हमला कर दिया और 8 वर्षों तक ये जंग चलती रही। इन समस्त परिस्थितियों में भी इस्लामी क्रांति न केवल बाकी रही बल्कि फलती फूलती रही। आज 4 दशक बीत जाने के बाद भी इस्लामी क्रांति के दुश्मन इसे मिटाना चाहते हैं और वे नहीं चाहते हैं कि ईरान दूसरे देशों, खास तौर पर मुस्लिम देशों के लिए एक आदर्श बनकर उभरे। अमेरिका, अवैध ज़ायोनी शासन और यूरोपीय देश आज इस्लामोफोबिया और ईरानोफोबिया को इसी मकसद के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। वे ईरान के पड़ोसी देशों को उसके खिलाफ भड़काते हैं और क्षेत्र में फूट डालने का प्रयास करते हैं। ईरान के खिलाफ अमरीका के कड़ी प्रतिबंधों का मकसद भी इस्लामी गणतंत्र पर दबाव डालना था।
इस्लामी क्रांति की सफलता के तुरंत बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इस्लामी गणतंत्र के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा कर दी, लेकिन व्यवस्थित रूप से ये प्रतिबंध राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के शासन में लगाए गए। इन प्रतिबंधों में ईरान के तेल और गैस उद्योग को निशाना बनाया गया और विदेशी कंपनियों को इसमें निवेश से रोका गया। जॉर्ज बुश ने 9/11 की घटना के बाद और अफगानिस्तान और इराक पर हमले के बाद ईरान को बुराई की धुरी करार दिया। बराक ओबामा ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को एक सैन्य कार्यक्रम करार देने का प्रयास किया ताकि ईरान पर रणनीतिक रूप से दबाव बढ़ाया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ओबामा प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलाफ 6 प्रस्ताव पारित करवाए, लेकिन आखिरकार ओबामा को ईरान के साथ परमाणु समझौते के लिए झुकना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा के समझौतों को पैरों तले रौंद डाला और ईरान के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लागू कर दिए। हालांकि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने परमाणु समझौते की बहाली पर बल दिया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से बाइडेन प्रशासन विपरीत दिशा में कदम उठा रहा है।
वर्ष 1979 में क्रांति की सफलता के बाद से ही ईरान संघर्ष और युद्ध की स्थिति में रहा है। ईरान पर दबाव बनाने के लिए सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया गया, उसके खिलाफ मनोवैज्ञानिक और मीडिया युद्ध छेड़ दिया गया और अब कड़े प्रतिबंधों और ईरानोफोबिया द्वारा इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये सभी प्रयास पिछले 4 दशकों के दौरान नाकाम हुए हैं, आज भी उनकी नाकामी को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ईरान ने इन प्रतिबंधों के खिलाफ प्रतिरोध करना सीख लिया है और आज वो क्षेत्र ही नहीं बल्कि दुनिया की एक महत्वपूर्ण ताकत बन गया है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामनाई के नेतृत्व को इन सफलताओं की कुंजी करार दिया गया। अमरीका और ज़हनी शासन की समस्त साजिशों के बावजूद ईरानी राष्ट्र अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
तो दोस्तों, कार्यक्रम यहीं पर अब सभा समाप्त होती है। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।